Countrywide.
नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम कंट्रीवाइड के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रमुख कदम। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मदन जैड़ा। मदन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
मदन जी, सबसे पहले किसानों की आय बढ़ाने, इसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन सरकार के वो कदम जो इसकी तरफ एक पुख्ता कहीं ना कहीं राह दिखाते हैं, उसके बारे में बताइए।
देखिए, मैं अगर पूरे विषय पर जाऊं, जो आपने विषय रखा आज की चर्चा का, उसमें यह है कि खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय कैसे बढ़े। तो अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले किसान को सशक्त बनाना होगा। तो किसान की आय बढ़ाने से जो पहला मतलब है वो ये होता है कि जो किसान की लागत है फसल पर वो बढ़ रही है और उतना उसे मूल्य नहीं मिल पाता। अगर हम इसको अलग अलग विभाजित करें तो चार पांच मुद्दे थे किसानों के समक्ष। एक था सिंचाई का मुद्दा, दूसरा था उर्वरक का मुद्दा, तीसरा था जो प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होता है, और चौथा मुद्दा उसका यह था कि किसान एक परिवार है, अगर वो सारा खेती पर लगा है और खेती से उतनी आय नहीं होती तो उसे एडिशनल इनकम कैसे हो। ये चार मुद्दे थे। तो सरकार ने इन चारों मुद्दों पर देखा जाए तो अलग अलग काम करके किसान को सशक्त बनाने की कोशिश की है। अगर हम सिंचाई की बात करें तो 140 मेगा सिंचाई प्रोजेक्ट हमारे देश में चल रहे थे, जिसमें से अगर हम एक दशक पहले तक देखें तो 99 प्रोजेक्ट उसमें से पेंडिंग चल रहे थे और उनपे काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इस सरकार के कार्यकाल में अगर हम पिछले 8-10 सालों की प्रगति को देखें, उन 99 प्रोजेक्ट पे काम आगे बढ़ा है और 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है और सिंचित हुआ है। और इसका फायदा किसको हुआ? किसान को, क्योंकि किसान को पानी मिला। होता यह था कि किसान फसल बोता था और बारिश नहीं होती थी तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी,
पूरी तरह मौसम पर निर्भर
हो गया था। तो मौसम पर निर्भरता किसान की कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह था कि हमारे देश में उर्वरकों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा था और स्थिति यह थी कि किसान साल दर साल खेती में उर्वरक ज्यादा डालते जा रहा था। इस साल जितने का उर्वरक डालता था अगले साल और ज्यादा डाल रहा था। कारण यह था कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो लगातार घट रही थी। इससे निपटने के लिए सरकार ने पहले तो जो किसानों की जो खेतों की मिट्टी है उसकी जांच कराई और किसानों को मृदा कार्ड इशू किए कि भाई आपकी ये जो जमीन है इसमें सिर्फ यूरिया की जरूरत है, ये कंपोनेंट की कमी है, या इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की जरूरत है, इसमें सिर्फ फास्फोरस की जरूरत है। उससे फायदा क्या हुआ कि किसान जिस चीज की कमी है वही खाद उसमें डालने लग गया। पहले था वो यूरिया भी डाला था, नाइट्रोजन भी डाला था, फास्फोरस भी डाला, अब उसे पता है कि सिर्फ यही चीज डालनी है। हालांकि आज यूरिया का जो 3300 रुपए का बैग है, सरकार आज भी उसे 300 रुपए में किसान को दे रही है और 3000 रुपए सरकार सब्सिडी देती है। तीसरा विषय था कि नुकसान। अब यह कि सिंचाई भी हो गई खेती की और खाद भी किसान के कम पड़ी, लेकिन ऐन मौके पर सूखा आ गया या बाढ़ आ गई या कोई और तूफान आ गया तो फसल सारी तबाह हो गई। अब इसको बचाने के लिए फसल बीमा योजना शुरू की गई और अगर 1 लाख रुपए की किसान की फसल की वैल्यू है तो सिर्फ 1000 रुपए का प्रीमियम देके वो 1 लाख रुपए की फसल को अपनी सिक्योर करा सकता है। तो फसल बीमा योजना से किसान की जो गारंटी हो गई कि मैंने अगर 1 लाख रुपए की फसल अगर तैयार खेतों में खड़ी होनी है और 1000 रुपए मैंने उसका बीमा भर दिया तो अब मेरी गारंटी अब सरकार की है। अगर प्राकृतिक आपदाओं से अगर उसको फसल को नुकसान होता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो यहाँ इस मोर्चे पर किसान को फायदा हो गया, फसल बीमा योजना के बहुत शानदार नतीजे हैं। और चौथा अगर हम पॉइंट करें, अब ये मुद्दा आता है कि भाई किसान में 5-6 लोग हैं परिवार के, सारे खेती बाड़ी पर लगे हैं और जो आय हो रही है उनको लगता है कि कम है, भाई आजकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें आप देखिए सरकार ने क्या किया, एक तो किसान सम्मान निधि किसानों को देना शुरू किया, 6000 रुपया हर साल दिया और 21 किस्त इसकी जा चुकी हैं। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को कैश सरकार की तरफ से दिया गया, जो छोटे किसान थे, जो ज्यादा जरूरतमंद थे, दूर दराज के थे, तो उनको दिया गया। तो इससे किसान को एक सपोर्ट मिल गया, उसे एक सशक्तिकरण के लिए एक मौका मिल गया। और इसके अलावा आप देखिए आज बहुत सारी स्कीमें हैं, द्रोण दीदी स्कीम है, ये जो लखपति दीदी स्कीम है, ये कौन लोग हैं, ये महिलाएं कौन है? वही किसान परिवार की महिलाएं। तो इनके लिए जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, ये इस तरह की जो प्रोत्साहन वाली स्कीमें चलाएगी, तो इनसे भी इंडायरेक्टली किसान परिवार को फायदा हुआ। और अब देखिए हमारे यहाँ देश में, भारत में सोलर पे बहुत काम हो रहा है, सौर ऊर्जा पे बहुत अच्छा काम हुआ है भारत में, कई विकसित देशों से भी बेहतर काम हुआ है। तो उसमें आप अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो एक किसानों के लिए कुसुम योजना चलाई गई थी कि अगर आपका जो ट्यूबवेल है उसको भी आप डीजल से चलाते हैं तो डीजल का खर्चा बहुत आता है तो आपको डीजल खरीदने की जरूरत ही नहीं। तो सरकार ने एक स्कीम दी आपको, आप हमसे लोन लीजिए और उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी और आप एक सोलर पैनल से लगाइए, सोलर पैनल से ही आपका ट्यूबवेल चलेगा। कई स्टेट में स्कीम अच्छी चल रही है, कई स्टेट में इसको पिकअप कराया जा रहा है। इसी प्रकार बिजली की खपत है, तो बिजली की खपत के लिए आपको याद होगा 2-3 साल पहले ये शुरू हुई थी पीएम सूर्य घर योजना, और इतने अच्छे इस योजना के नतीजे रहे हैं। गांव में लोगों का छत होती है, बहुत बड़ी छत होती है, शहरों में तो हमारे मकान बहुत छोटे होते हैं, लेकिन गांव में किसान है या जो भी ग्रामीण परिवार है, खेती सभी के पास होती है गांव में, तो उनके छत बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उन छत में उन्होंने सोलर पैनल लगा लिए और उससे जो बिजली पैदा होती है उस बिजली को ग्रिड से जोड़ दिया गया। अब आपने अगर एक महीने में 300 यूनिट बिजली पैदा की तो वो सरकार को आपकी 300 यूनिट चली गई, अब आपका खर्च हुआ 200 यूनिट, तो 100 यूनिट आपकी सरकार के पास बैलेंस है। अब साल के आखिर में चाहे तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिए, चाहे तो जितनी यूनिट बनती है साल के आखिर में अगर आपने 500 यूनिट बचा ली तो 500 यूनिट का सरकार आपको पैसा दे देगी। तो इस प्रकार से ये जो सहयोगी स्कीम थी और इससे जो किसानों को सपोर्ट मिला तो इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ। और इसी में एक चीज और बताऊंगा, एमएसपी की बात करें तो रूटीन में एमएसपी बढ़ाई है और तमाम पहले कुछ फसलों के एमएसपी हुआ करते थे, गेहूं चावल और इनके होते थे, अब करीब करीब कपास से लेकर हर फसल का, ज्वार का, नारियल का, हर चीज का एमएसपी है। और जो एमएसपी का निर्धारण किया गया वो कॉस्ट से कम 50% ज्यादा तो है, वो किसी किसी में और ज्यादा भी है, तो इससे भी एक सपोर्ट मिला किसानों को। तो कुल मिला के इन तमाम स्कीमों से, जो कुछ स्कीमें ऐसा लगता है कि सीधे तौर पर किसानों के लिए नहीं है लेकिन वो डायरेक्टली उसको किसान को फायदा हुआ है, तो इन स्कीमों से एक जो किसान का सशक्तिकरण हुआ है तो मुझे लगता है कि उससे हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। जो 10 साल पहले 252 मिलियन टन था वो आज 357 मिलियन टन हो गया है, तो 100 मिलियन टन करीब बढ़ गया, मतलब 10 करोड़ टन के करीब उत्पादन बढ़ा है।
किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रमुख कदम के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया।
इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे, आज किसान सम्मान निधि उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है।
तो आपने जैसे बताया कि किसानों के सशक्तिकरण या उनको मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले तो उनकी जो कृषि की लागत थी उस पे काम किया सरकार ने, साथ ही साथ उनकी आय बढ़ाने के लिए जो अन्य उपाय
सपोर्टिंग स्कीमें
चलाई, वो बहुत सारी चीजें जिसमें उनके ज्यादा पैसे खर्च होते थे कहीं ना कहीं सरकार ने उस पे ध्यान दिया और उसकी लागत कम करने में उन्होंने मदद करी, साथ ही साथ उनकी उपज सही समय पे बाजार में जाके उसको उचित मूल्य मिले इसके लिए भी सरकार ने ध्यान दिया। इसके बावजूद अगर किसी प्राकृतिक आपदा से उनको नुकसान होता है तो उसके भी सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना से काम करा दिया। क्या इसी की वजह से जो आपने बताया कि 252 मिलियन टन का उत्पादन था जो अभी 357 मिलियन टन से ज्यादा का उत्पादन बढ़ा है, क्या उसकी सिर्फ यही एक वजह है? और क्या इसके साथ साथ किसान जो शायद कृषि क्षेत्र से एक उबने लग गया था, क्या अब इसकी तरफ किसानों का रुझान या रुचि बढ़ी है?
इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो हमने देखा कि कुछ साल पहले कोविड की महामारी हुई थी, उस समय शहरों से बहुत सारे लोग गांव की तरफ गए थे, तो वो एक दौर था जब खेती से लोग धीरे धीरे हट रहे थे, लोग चाह रहे थे कि नौकरी मिले शहरों में जाएं। लेकिन कोविड एक ऐसी बड़ी घटना हुई, भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुई, उससे लोग अपने वापस गांव को गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये फैसला लिया कि हमें अब गांव में ही रहना है, गांव में ही काम करना है, और ऐसा नहीं है कि हम शहर में ही काम करके अपनी आजीविका चला सकते हैं, गांव में रहकर भी खेती बाड़ी करके भी हम अपनी आजीविका कमा सकते हैं। और सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा और ध्यान में रखकर सरकार ने ये सोचा कि हमारा यूथ अगर गांव को वापस लौटा है तो वो खेती तो करेगा, उसको थोड़ा बहुत काम भी मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि अभी हाल में ही जो मनरेगा स्कीम थी और जी राम जी के नाम से उसका एक नया क्लेवर दिया गया और उसमें जहां पर 100 दिन पहले रोजगार मिलता था अब ये कर दिया कि 125 दिन कम से कम रोजगार मिलेगा, तो 25 दिन सरकार ने यहां भी बढ़ा दी। तो कोशिश यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में टिकें, वो अपने खेत खलिहानों पे निर्भर रहें, और जो तमाम प्रयास हुए उससे एक फायदा ये भी हुआ है कि जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें, कई स्टेट में नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, अभी पर हेक्टेयर जैसे गेहूं चावल का उत्पादन कम है और अगर हम किसी विकसित देश से उसकी तुलना करें उसकी तुलना में कम है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पहले की तुलना में वो बड़ा है। जबकि अगर हम किसानों की जो जोत कहें वो छोटी हो रही है, उसके विभाजन की वजह से परिवार छोटे छोटे हो रही है, तो किसानों की जोत कम हुई है उसके बाद भी उत्पादन बढ़ रहा है, पर हेक्टेयर बढ़ रहा है और अभी भी उसके बढ़ने की गुंजाइश है, अगर प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाए अभी भी उसकी गुंजाइश है, तो ये भी एक कारण है इससे भी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है।
अपने वैज्ञानिक तरीके की बात करी तो ऐसे अभी बीच में डिजिटल एग्रीकल्चर क्रांति की भी बात की गई थी और ये जो वैज्ञानिक तरीके हैं इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से किसानों को सीधे तौर पे इसका फायदा मिला है, कृषि उपज को बढ़ाने में भी और जो कृषि की किस्म है उसको उन्नत बनाने में भी इसका फायदा है।
आज अगर हम किसानों की जो बीज की बात करें, अगर कृषि की किस्मों की बात करें, दो तीन इसमें चैलेंजेज हैं और सबसे बड़े चैलेंज क्या है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है। अभी अगर हम इसी मौसम की बात करें, अभी जैसे ही फरवरी खत्म हुआ एकदम से गर्मी बढ़ गई, अभी तो थोड़ा सा बारिश हो गई तो फिर टेम्परेचर डाउन हो गया, तो हमने देखा कि इस बार जो है एकदम जो बीज का एक फरवरी और मार्च के बीच का एक जो मौसम होता है वो हमें लगा कि खत्म हो गया, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं, वो करीब करीब खत्म हो गया ऐसा लगा। तो ये जो चैलेंजेज हैं इससे निपटने के लिए अगर कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो उन्होंने ऐसी सैकड़ों किस्में हाल में तैयार की हैं जो ज्यादा गर्मी को सहन कर सकती हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरा हमने ये देखा कि जो मौसम का चक्र है वो बिगड़ रहा है और कभी मानसून देरी से आता है और जल्दी चले जाता है, तो इससे उन्होंने क्या किया कि जो फसल का, चाहे गेहूं की या धान की फसल का जो एक टाइम होता है, कोई फसल 40 दिन में तैयार होती है, कोई 35 दिन में तैयार होती है, तो उन्होंने उसे मौसम के हिसाब से एडजस्ट किया है कि कम समय में ऐसे पौधे धान के पैदा करें कि कम समय में वो जल्दी तैयार हो जाए। और ये भी कोशिश किया है कि उनको न्यूट्रिशन से रिच करें, उनको ज्यादा पोषक बनाएं। जैसे बहुत सारी फसलें हमारे ऐसी हैं जिसमें जो पोषण का कंटेंट है कम होता है, या जो मिनरल है उसमें कम होते हैं, या उसमें आयरन की मात्रा कम होती है, लेकिन बहुत सारी नई फसलें ऐसी तैयार की गई हैं जिसमें आयरन कंटेंट बढ़ाया गया है, जिंक कंटेंट बढ़ाया गया है और विटामिन की मात्रा बढ़ाई गई है। तो एक तरफ जहां क्लाइमेट चेंज से मुकाबला किया गया है, दूसरी तरफ वहां उसी फसल को, उसी अनाज को ज्यादा पौष्टिक बनाने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार अगर हम AI की बात करें या डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो सबसे पहली बात है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आज वैज्ञानिकों की सूचना किसान तक पहुंचाना आसान हो गया है। जैसे हर जिले में मौसम विज्ञान केंद्र बने हैं और आज किसान को अगले 2-3 दिन में जो बारिश की, मौसम की सूचनाएं सारे उसमें SMS के जरिए उसके फोन तक पहुंच जाती है, स्मार्टफोन तक चली जाती। इसके अलावा स्पेसिफिक वेदर चैनल बनाए गए हैं, वो किसान को अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस हैं। आज भारत में सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो आदमी गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो अफसर हो, मोबाइल फोन एक स्मार्टफोन सबके पास है। उससे वो सबसे ज्यादा काम करता है, उससे डिजिटल ट्रांजेक्शन भी करता है, उससे अपने मतलब की सूचना भी निकालता है, उससे फोन पे बात भी करता है और मनोरंजन भी करता है। और हर सूचना आजकल सरकार ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, मौसम विभाग ने भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी, जहां पर किसान को सीधी जानकारी मिल रही है फसल के बारे में, नई किस्मों के बारे में, उर्वरक की उपलब्धता के बारे में, उसकी खेती की जमीन की गुणवत्ता के बारे में। तो मुझे लगता है कि इन तकनीकों से बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा मिल रहा है।
तो किसान जिस तरह से, अगर उसको अपनी जमीन से या उसको खेती किस तरह से करना है, अगर उसके बारे में कोई उसकी शंकाएं हैं या उसके जो प्रश्न हैं, क्या उसको इन्हीं संचार माध्यम से या तकनीक के माध्यम से उसके तुरंत जवाब मिलने आज संभव हो पाए हैं?
काफी हद तक संभव है और इसमें आगे लगातार प्रयास किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र है वो सीधे तौर पर किसानों से जुड़ रहे हैं, वो फिजिकल रूप से भी जुड़ रहे हैं, इसके अलावा जो डिजिटल तकनीकों के जरिए भी कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों से जोड़ा जा रहा है। और करीब करीब हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जो बड़े जिले हैं उसमें एक से अधिक केंद्र भी है। इसके अलावा जहां जहां कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन कृषि विश्वविद्यालयों की तरफ से आसपास के जिलों के किसानों के लिए अलग अलग से बहुत सारी हेल्पलाइन और बहुत सारे इस तरह के डिजिटल इनिशिएटिव, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल शुरू किए गए हैं, जिनसे किसानों को काफी हद तक वैज्ञानिक जानकारी मिल रही है। और ये क्रम लगातार जारी है और आगे भी ये लगातार बढ़ेगा।
बहुत सारी ऐसी फसलें थी जिस पे हम सिर्फ आयात पे निर्भर थे, क्या इन सारे उपायों से किसानों के लिए उपज बढ़ाने के, आपने बताया कि उपज बढ़ी है।
अगर हम आयात की बात करें, जैसे दलहन और तिलहन पर हमारी जो आयात पर निर्भरता ज्यादा थी वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है और वो बढ़ोतरी लगातार बढ़ रही है। इनका जो क्षेत्रफल है, दलहन और तिलहनों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है। जैसे जैसे हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ रहा है तो इस पे और आगे विस्तार होगा।
बढ़ोतरी से आपका तात्पर्य यह है कि जो उसकी उपज जहां पे बोई जाती थी उसमें
बढ़ोतरी
ना कि आयात में बढ़ोतरी हुई? आयात
नहीं, आयात तो घट रहा है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है
जी।
तो जैसे गेहूं चावल के मामले में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन पहले हमारी कोशिश होगी कि हमें आयात नहीं करना पड़े। और हो सकता है कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति भी आई कि हम जो चीज आयात करते थे उसी चीज को हम निर्यात भी करेंगे, हमारे पास एक्सेस उत्पादन हो जाएगा। तो
इसके अलावा जो सरकार की ये जो मंशा थी कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित, इन सारे उपायों से सीधे तौर पे खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना कितना आसान हो पाया?
देखिए, ये अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो 3 पॉइंट है इसमें। एक तो यह है कि हमारे पास उत्पादन पर्याप्त होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 357 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है और ये 252 मिलियन टन पहले था, उसमें भी हमारी खपत पूरी हो रही थी, तो अब 100 मिलियन टन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा उत्पादन है। दूसरी अच्छी बात यह हुई है कि लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हुए हैं, हमारे देश में अनाज का कंजम्पशन घट रहा है। जो 1994-95 में 11 किलो पर पर्सन अनाज कंजम्पशन होता था, वो अभी 2018-19 के आसपास ये 9 किलो करीब आ गया। तो वो घट इसलिए रहा है क्योंकि पहले क्या करते हैं, हम रोटी चावल ज्यादा खाते थे, अब हम रोटी चावल के साथ सलाद भी खा रहे हैं, गाजर भी ले रहे हैं, मूली भी ले रहे हैं और कुछ दाल भी ले रहे हैं, कुछ सब्जी ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे क्या है, अनाज का कंजम्पशन घटा है। ये एक
पोषण के प्रति ज्यादा जागरूक,
पोषण के प्रति ज्यादा जागरूक है, एक अच्छी बात ये हुई है। दूसरी बात क्या हुई है कि हमें गरीब कल्याण योजना सरकार ने शुरू कर रखी है, उसमें सरकार 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को हर महीने देती है, 80 करोड़ आबादी इसमें कवर है। तो इससे क्या हुआ, जो तात्कालिक जो फायदा देने की कोशिश की लोगों को कि किसी भी रूप में कोई भी आदमी अनाज की वजह से भूखा न रहे, तो एक सबसे बड़ी बात यह हुई है कि 80 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया गया है। ये इसका दूसरा पहलू, उत्पादन हमारे पास काफी है और दूसरा हम निःशुल्क भी दे रहे हैं लोगों को ताकि किसी भी रूप में लोग भूखा न रहे।
मदन जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने सरल शब्दों में बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं।
कंट्री वाइड।